नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात में उत्कृष्टता हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया और नागरिकों से भारत को वैश्विक व्यापार और ज्ञान का केंद्र बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भाजपा सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। एनडीए के सांसद भी इसमें शामिल होंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि रोजगार सृजन सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख स्तंभ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान निकालने के प्रति आशान्वित। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूरोपीय नेताओं ने साथ बातचीत करेंगे। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में लाखों युवा सड़कों पर उतरे और मौसम विभाग ने आज उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से भारत को ज्ञान और व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद APC के प्लैटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक आत्मनिर्भर तथा निर्यात में उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता है।
पिछले 7 दशकों के दौरान भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में काफी बदलाव हुआ है। बदलाव के ये प्रक्रिया आपको जारी रखनी है तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा है कि कोविड काल में आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई थी और ये निरंतर फलदायी साबित हो रही है। उन्होंने आगे कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख आयाम वो होना चाहिए जहां वैश्विक अस्थिरता का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर कम से कम प्रभाव पड़े। राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे देश में उपलब्ध असाधारण क्षमताओं का उपयोग करके वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को अवसरों में बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि विश्व व्यापार व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में हो रहे बदलाव के कारण EEPC की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि EEPC अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतीय उत्पादकों के बीच एक सेतु का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा और एनडीए सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। संसद परिसर के बाल योगी सभागार में कल से शुरू हुए 2 दिवसीय कार्यशाला में वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सांसद कार्यशाला जैसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दूसरे से सीखने और लोगों की बेहतर सेवा करने पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कार्यशाला के पहले दिन बताया कि प्रधानमंत्री सभी प्रशिक्षण सत्रों के दौरान मौजूद थे।
हमारा एनडीए के साथी भी सब ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सारा MPs का सुबह से रात तक हमारा कार्यशाला चली है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी शुरू से अंत तक रहा है, क्योंकि हमारा BJP का ये संस्कृति है कि हमारा नेता हो या आम कार्यकर्ता सब एक ही है और आगे पीछे बैठना ऐसा हमारे यहाँ कोई सिस्टम बना के रखा नहीं है। और इसमें औपचारिक तौर पर कार्यक्रम तो चलता है लेकिन बैठने का औपचारिक नहीं होता है, सब जहाँ चाहे वहाँ बैठते हैं। प्रधानमंत्री जी भी आखिरी सीट पे बैठते हैं जाके। प्रधानमंत्री जी तो मार्गदर्शन देना ही होता है क्योंकि हम लोग सब आखिर में तो उनसे सुन करके फिर आगे का काम तय करना होता है।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज इस बात पर जोर दिया है कि रोजगार सृजन सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख स्तंभ है। वह नई दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और एक निजी कंपनी के बीच युवाओं के रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर बोल रहे थे। डॉक्टर मांडविया ने कहा है कि निजी प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग से रोजगार के अवसरों तक पहुंच बढ़ी है और कृषि, सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूती मिली है। उन्होंने आगे कहा है कि राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर 46 लाख वैकेंसी दर्शाई गई है और इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल ने ई माइग्रेंट पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन करा है और उसके द्वारा 28,000 वैकेंसीज ऑलरेडी नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर फ्लैग हो रही है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होंगे। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी सुदर्शन रेड्डी से होगा। इस वर्ष जुलाई में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण ये चुनाव आवश्यक हो गया। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की। एक अधिक कुशल और नागरिक हितैषी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रधानमंत्री का सपना साकार हुआ जब 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने आम आदमी पर केंद्रित दरों की युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी। परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5, 12, 18 और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। इन सुधारों ने कई क्षेत्रों में कर दरों को कम करके नागरिकों का जीवन आसान बना दिया। आज हम वस्त्र उद्योग के लिए किए गए सुधारों पर नजर डालेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जीएसटी सुधार आम आदमी पर केंद्रित है और इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे।
कपड़ा क्षेत्र में जीएसटी दरों में बदलाव से ढांचे में गड़बड़ियां दूर होंगी, लागत घटेगी, मांग बढ़ेगी, निर्यात को समर्थन मिलेगा और नौकरियां बनी रहेंगी। कृत्रिम रेशों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं कृत्रिम सूत पर इसे 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की समस्या दूर होगी, यानी अब रेशा, सूत और कपड़े की दरें एक जैसी होंगी। इससे निर्माताओं पर कार्यशील पूंजी का बोझ भी कम होगा। इसके अलावा किफायती कपड़े और सस्ते होंगे, जिससे विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। यह सुधार छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों में मांग को फिर से बढ़ावा देगा। हस्तशिल्प वस्तुएं, हथकरघा की सूती दरियां, कालीन और फर्श पर बिछाए जाने वाले कवर अब केवल 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे, जो पहले 12% के दायरे में थे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि अब कपड़ा क्षेत्र के ज्यादातर अध्याय 5% के स्लैब में आ गए हैं, जिससे निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब सिंथेटिक कपड़ों के व्यापार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। उद्योग जगत ने भी इन सुधारों का स्वागत किया है। कपड़ा व्यापारी सुशील गरोड़िया ने मीडिया से कहा कि टैक्स ढांचा सरल होने से व्यापारियों पर बोझ घटेगा और इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा।
सब जगह जीएसटी की रेटे में कुछ न कुछ बदलाव आया है, यान की रेटों में बदलाव आया, तो उससे कपड़ा बाजार पे भी पॉजिटिव असर आने की पूरी संभावना है। तो इन सब चीजों से जो व्यापारियों के जीएसटी रिफंड की भी समस्या आ रही थी, तो वो भी एक मोटा मोटी समस्या काफी हद तक इससे खत्म हो जाएगी। काम का जो बोझ है व्यापारियों का, विवरों का, वो घटेगा, उसके साथ उनको काम करने के लिए समय ज्यादा मिल पाएगा और पब्लिक की जो बचत होगी उससे वो अपनी और अन्य चीजों पे अपना बहुत ज्यादा खर्च कर पाएंगे, तो उससे इकोनॉमी में चारों तरफ से दिवाली का जो मार्केट में बूम आता है वो ऐसा लग रहा है कि दिवाली के पहले ही आना चालू हो जाएगा।
जीएसटी में यह बदलाव भारत की फाइबर न्यूट्रल नीति को मजबूत बनाएगा, जिससे सूती और कृत्रिम दोनों तरह के कपड़ा क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित होगा। अक्षित कुमार वैद्यान के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में आयोजित कैबिनेट आपके द्वार में अरुणाचल प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण नियोजन संशोधन विधेयक 2025 के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस संशोधन का उद्देश्य शहरी नियोजन ढांचे को मजबूत करना, तेजी से हो रहे शहरीकरण का प्रबंधन करना और राज्य में 47 अधिसूचित शहरी केंद्रों में व्यवस्थित और सतत विकास सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने आपातकालीन प्रतिक्रिया और अग्निशमन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 4 नए अग्निशमन केंद्रों और 68 नई चौकियों का स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने कल तलाशी और घेराबंदी अभियान के दौरान विभिन्न उग्रवादी समूहों के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। मणिपुर पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों ने मणिपुर के तेंगनोपाल जिले में भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उग्रवादी समूहों पीएलए, केसीपीएमएफएल और यूएनएलएफके के एक एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। जम्मू के आरएस पूरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कल रात एक पाकिस्तानी घुसपैठ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास जताया है कि रूस यूक्रेन विवाद जल्द ही सुलझ जाएगा। ट्रंप ने संवाददाताओं को बताया है कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे और यूरोपीय नेता भी इस संकट के समाधान के लिए रणनीतियों पर चर्चा के लिए अमेरिका आने वाले हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।